अध्याय 3, भारत के भौतिक प्रदेश, विशाल मैदान। यह मैदान प्रायद्वीपीय भारत को बाह्य प्रायद्वीपीय भारत से अलग करता है। यह नवीनतम भूखंड है जो हिमालय की उत्पत्ति के बाद बना है। यह सिंध गंगा ब्रह्मपुत्र का प्रमुख भाग है, जो कि भौगोलिक दृष्टि से एक खंड है, जिसे भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के राजनीतिक विभाजन ने अलग कर दिया है। पश्चिम में सिंध नदी के मैदान का अधिकांश भाग और पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का अधिकांश भाग आज हमारे देश से अलग हो गया है। यही कारण है कि शेष मैदान को भारत के विशाल मैदान के नाम से संबोधित करना अधिक युक्तिसंगत है, जिसमें सतलज व ब्यास का मैदान, गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान तथा ब्रह्मपुत्र की घाटी शामिल हैं। अनेक भारतीय विद्वानों ने इस मैदान को विशाल मैदान के नाम से संबोधित किया है। क्षेत्रफल व विस्तार। यह विशाल मैदान विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला भूभाग है। इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस मैदान की लंबाई पूर्व पश्चिम दिशा में 2400 किलोमीटर है, लेकिन चौड़ाई में भिन्नता पाई जाती है, जो क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर है तथा पूर्व में इसकी चौड़ाई घटकर 145 किलोमीटर रह जाती है। इस मैदान का ढाल बड़ा समतल है। इसका अधिकांश भाग समुद्र तल से 150 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से इस मैदान का विस्तार उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तथा असम राज्यों में है। अपनी पश्चिम सीमा पर यह राजस्थान मरुभूमि में घुल मिल गए हैं। मैदान का निर्माण। इस विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से हुआ है। यह निक्षेप काफ़ी गहरे हैं, जिनकी मोटाई के बारे में अभी तक कोई निश्चित मत प्रकट नहीं किया जा सका है। कुछ प्रयोगों के अनुसार इसकी औसत मोटाई 1300 से 1400 मीटर तक है। कांप की गहराई के बारे में अनेक विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार प्रकट किए हैं। पहला, भूमि की खुदाई से पता लगा है कि कांप मिट्टी की मोटाई पृथ्वी की ऊपरी सतह से 400 मीटर तथा समुद्री सतह से 305 मीटर नीचे तक है। दूसरा, पाताल तोड़ कुओं की खुदाई करने के लिए जितने भी छिद्र किए गए हैं, वह सब पथरीली चट्टानों तक पहुँचने में असफल रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें इस खुदाई में कांप मिट्टी की अंतिम तह के बारे में पता नहीं लग सका है। तीसरा, ओल्डहम ने बताया है कि विशाल मैदान में कांप की गहराई में भिन्नता पाई जाती है। मैदान के उत्तरी भाग में इसकी गहराई 457 मीटर है, जो कि दक्षिण की ओर कम होती जा रही है। चौथा, बुर्राट के अनुसार यह विशाल मैदान अपने उत्तरी भाग में बहुत अधिक गहरा है। सॉरी। पाँचवा, भूगर्भिक सर्वेक्षण के आधार पर जो गणना की गई है, उससे पता लगता है कि इस आर्कियन चट्टानों के ऊपर इन निक्षेपों का जमाव कुछ गहराई तक पाया जाता है। उपरोक्त विवरण से यह जानकारी मिलती है कि यह विशाल मैदान कांप निक्षेपों से बना है, लेकिन यह निक्षेप कितनी गहराई रखते हैं, इसके बारे में विद्वान लोग अभी तक एक राय कायम नहीं कर सके हैं। यह कांप की गहराई सबसे अधिक दिल्ली की पहाड़ियों व राजमहल की पहाड़ियों के बीच पाई जाती है तथा यह राजस्थान और राजमहल पहाड़ियों व मेघालय पठार के बीच कम गहरी है, जो कि कम गहराई पर एक दूसरे से मिले हैं। अतः स्पष्ट है कि इस मैदान के नीचे की सतह न तो समतल प्रतीत होती है और न एक सार ही, वरन वह असमान ऊँची व नीची है। इस मैदान के गर्त में आर्कियन चट्टानों की उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं। अरावली पहाड़ियों का उत्तरी प्रक्षेप, जो दिल्ली से आगे हरिद्वार तक है, तथा पश्चिम में मेघालय का पठार आर्कियन चट्टानों की उपस्थिति को प्रकट करता है। इनके बीच के भाग अब कांप निक्षेपों से ढक दिए गए हैं। मैदान के बनने का समय। यह मैदान अपनी रचना के अनुसार प्रायद्वीपीय भारत तथा उत्तरी पर्वतों से बिल्कुल भिन्न है। यह प्लिस्टोसीन और अति नवीन कांप निक्षेपों से बना है, जो हिमालय के उत्थान के बाद से निरंतर एकत्र होते रहे हैं। यहाँ पर कांप के बहुत मोटे निक्षेप हैं, इन निक्षेपों में चिकनी मिट्टी, दोमट, कांप तथा रेत मुख्य हैं। इस कांप में अनेक स्थानों पर चूने के कंकड़ तथा नमकीन व खारी रेह बन गए हैं, किंतु पत्थर का प्रकटतया अभाव है। केवल वहीं पर पत्थर मिलते हैं जहां कहीं यह मैदान उत्तरी पर्वतों अथवा दक्षिणी पठार के समीप पहुंचते हैं। प्लेस्टोसीन काल के इस जमाव ने भारत को आधुनिक महत्वपूर्ण रूप प्रदान किया है। विशाल मैदान का विकास। इस विशाल गर्त को नदियों ने किस प्रकार भरा होगा, यह प्रश्न भी हमारे सामने अत्यंत महत्व का है। लगभग 2.25 लाख वर्ष पूर्व हिमालय के उत्थान के कारण नष्ट होने से इसके द्वारा बहने वाला हिमालय की तलहटी का जल अनेक नदियों के रूप में दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगा। हरियाणा और उत्तर प्रदेश का सीमांत इस घटना के कारण उस दिशा में जाने के बदले दक्षिण पूर्व की ओर ब्रह्मपुत्र, गंडक, घाघरा, गंगा, यमुना आदि नदियों के रूप में बहने लगा और इस प्रकार इन नदियों की उत्पत्ति हुई। उपयुक्त प्राकृतिक अवरोध के कारण पश्चिम की ओर का इंडो ब्रह्म नदी का जल व्यास, सतलज, चिनाब, झेलम, सरस्वती और सिंध नदी के रूप में दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगा। उस समय बंगाल, उत्तरी गुजरात एवं कच्छ प्रदेश का अस्तित्व नहीं था। यह प्रदेश उस समुद्र के गर्भ में थे, किंतु इन नदियों ने मिट्टी बिछा बिछा कर बाद में इन प्रदेशों की रचना की है। इस मैदान के निर्माण में हिमालय से निकलने वाली नदियों का सबसे अधिक योगदान रहा है। इन नदियों ने अनेक ऐसी नदियां हैं जिनके उद्गम स्थान हिमालय के उत्तर में हैं और यह सूचित करते हैं कि यह नदियां इन पर्वतों से पुरानी हैं और पर्वतों के सनय सनय ऊंचा उठने के कारण वे अपना मार्ग पूर्ववत बनाए रख सकी हैं। सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के उद्गम दक्षिण पश्चिम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट स्थित हैं। अपनी सहायक नदियों सहित वे पर्वतों के उत्क्षेप के साथ लगातार नव यौवन प्राप्त करती हैं, इसलिए वे इन पर्वतों के विशाल पिंड काटकर उत्तर भारत में स्थित सागरीय महानद में एकत्र करती रही हैं। यह नदियाँ इस विशेष स्थिति में हिमालय की कितनी कटान कर सकी होंगी, इस तथ्य का एक उदाहरण हमें गिलगित स्थित नदी की संकीर्ण घाटी से प्राप्त होता है। वहाँ इसकी जलधारा के दोनों ओर करीब 5180 मीटर ऊंचे पर्वत हैं। स्पष्टतः सिंध नदी ने अपने लिए इतनी गहरी घाटी बनाने के साथ साथ हिमालय की ओर कटान की है। इसी प्रकार हिमालय से निकलने वाली अन्य नदियों ने इसकी घोर कटान की है। समय समय पर पहाड़ों का टूटकर गिरना, हाल ही में गोखरा झील का टूटना आदि इस बात का प्रमाण है कि नदियां हिमालय की निरंतर घोर कटान में लगी हुई हैं और इस घोर कटान से विशाल मैदान का आवरण तैयार कर रही हैं। दक्षिण भारत की नदियों द्वारा निर्मित अंश अपेक्षाकृत बहुत कम हैं, क्योंकि वे एक स्थिर भूभाग पर बहती रहती हैं। यहाँ की नदियों में सोन नदी प्रमुख है, लेकिन यह भी अपने छोटे से प्रवाह देश में कम वर्षा के कारण मिट्टी का कटान कर सकी है। विशाल मैदान का वर्गीकरण। इस मैदान का वर्गीकरण करना अत्यंत कठिन विषय है। इसकी सतह समतल व एकसार है तथा यह समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। यह ऊंचा भाग सहारनपुर, अंबाला और लुधियाना के बीच फैला है। यह उच्च भूखंड ही गंगा और सिंध नदियों के बीच जल विभाजक का काम करता है। सहारनपुर से लेकर कोलकाता तक इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। इस प्रकार इसका औसत ढाल 20 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। जैसे जैसे गंगा नदी की मध्य व निचली घाटी की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे यह ढाल और भी मंद हो जाता है। वाराणसी से गंगा नदी के डेल्टा तक ढाल का औसत और भी कम होकर 15 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर रह जाता है। मिट्टी की विशेषता व ढाल के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला भाबर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर, चौथा खादर, पांचवा रेह, छठा भूड़, सातवां डेल्टाई मिट्टी क्षेत्र। पहला विस्तार से भाबर प्रदेश, जहां हिमालय पर्वत और गंगा के मैदान मिलते हैं, वहां हिमालय पर्वत से निकलने वाली असंख्य धाराओं ने अपने साथ पर्वतीय क्षेत्रों से टूटकर गिरे हुए पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े काफ़ी गहराई तक जमा कर दिए हैं। इन कंकड़ पत्थरों से ढका हुआ भाग ही भाभर कहलाता है। यह गंगा मैदान की उत्तरी सीमा बनाता है। यह हिमालय के पथरीले ढाल हैं जो उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक 10 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई में फैले हुए हैं। इस भूभाग में आमतौर से नदियों का जल कंकड़ पत्थर के ढेर के नीचे नीचे ही प्रवाहित होता है। केवल बड़ी नदियों का जल ही धरातल पर प्रवाहित होता हुआ दिखाई देता है। दूसरा, तराई प्रदेश। भाभर प्रदेश के दक्षिण में उसके समानांतर फैला यह प्रदेश 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में पाया जाता है। भाभर प्रदेश में धरातल के नीचे बहने वाला जल यहाँ पर धरातल पर बहता हुआ दिखाई देने लगता है। यह निम्न समतल मैदान है जहाँ नदियों का पानी इधर उधर फैलकर दलदली क्षेत्रों का निर्माण करता है। यहाँ नदियों का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता। इसकी रचना बारीक कंकड़ पत्थर रेत और चिकनी मिट्टी से हुई है। इसको साफ करके धीरे धीरे खेती के अंतर्गत लाया जा रहा है। तीसरा, कांप प्रदेश एलुवियल रीजन्स। यह विशाल मैदान कांप मिट्टी की ही देन है। इस कांप को गंगोध अर्थात गंगा की कांप भी कहा जाता है। यह कांप रेत की कम मात्रा रखने वाली सख्त चिकनी मिट्टी की भांति है। यह कांप मिट्टी दो भागों में वर्गीकृत की जा सकती है। पहला, बांगर प्रदेश। यह मैदान का वह ऊंचा भाग है जहां सामान्य रूप से नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। यहां पुरानी कांप मिट्टियां पाई जाती हैं जिनका निर्माण काल मध्य से अपर प्लिस्टोसीन युग के बीच माना जाता है। इसका रंग हरा है तथा इसमें कंकड़ भी मिलते हैं। इसकी ऊंचाई कहीं कहीं 30 मीटर, लेकिन ऊंचाई में इस तरह उतार चढ़ाव हैं कि सरसरी दृष्टि से देखने पर बांगर और खादर में बहुत ही कम अंतर दृष्टिगोचर होता है। यही कारण है कि इस मैदान के धरातल का उतार चढ़ाव समुद्र की लहरों के समान लहराता हुआ दिखाई देता है। सतलज का मैदान तथा गंगा के ऊपरी मैदान में बांगर की अधिकता पाई जाती है। नदियों के मध्यवर्ती भागों पर बांगर प्रदेशों का विस्तार पाया जाता है। दूसरा, खादर प्रदेश। यह वह भूभाग है जहां नदियों की बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता रहता है। इसे नदियों के बाढ़ के मैदान या कछारी प्रदेश कहते हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ के जल से यहाँ की मिट्टी नवीन होती रहती है। यह अपर प्लिस्टोसीन युग से लेकर आधुनिक काल का है। इसका रंग हल्का है, बालू व कंकड़ से युक्त है तथा भूमिगत जल का उत्तम संग्रहक है। इसकी उपजाऊ शक्ति में प्रतिवर्ष वृद्धि होती है। चौथा, रेह। बांगड़ मिट्टी के उन क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई कार्यों की अधिकता है, वहाँ पर कहीं कहीं भूमि पर एक नमकीन सफ़ेद परत बिछी हुई पाई जाती है। सफ़ेद परत वाली इस मिट्टी को रेह या कल्लर के नाम से पुकारते हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शुष्क भागों में इसका विस्तार सबसे अधिक है। पांचवा, भूड़। बांगर मिट्टी के उन क्षेत्रों में जहाँ आवरण क्षय के फलस्वरूप ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है, वहाँ अब कंकरीली ऊँची भूमि मिलती है। ऐसी भूमि को भूड़ कहते हैं। यह बालू के ढेर हैं जो प्राचीन काल में जल के जमाव से बन गए थे। गंगा और रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्रों में भूड़ का जमाव विशेष रूप से पाया जाता है। छठा, डेल्टाई प्रदेश। डेल्टा के मैदान का निर्माण नदी के मुहाने से निकट होता है। ब्रह्मपुत्र गंगा का विशाल डेल्टा भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। इस डेल्टा का पुराना भाग भारत में है जो लगभग स्थिर है। भारत नवीन भाग बांग्लादेश में है जो अभी भी निर्माणावस्था में है। वास्तव में डेल्टाई प्रदेश खादर प्रदेश का विस्तार क्षेत्र है। यह विशाल मैदान अपनी दक्षिणी सीमा पर विशेष रूप से चंबल और सोन नदियों के बीच नदियों द्वारा बुरी तरह काट दिया गया है। इसको बुरा स्थल बैड लैंड भी कहा जाता है। विशाल मैदान का उपविभाजन। भारतीय विशाल मैदान को उसकी धरातलीय विशेषताओं के आधार पर निम्न उपभागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, पंजाब हरियाणा मैदान। दूसरा, राजस्थान का मैदान। तीसरा, गंगा का मैदान। और चौथा, असम की घाटी। पहला विस्तार से पंजाब हरियाणा मैदान, इसे सतलज यमुना विभाजक भी कहते हैं। पंजाब हरियाणा और दिल्ली राज्यों पर इसका विस्तार है। सतलज व्यास व रावी नदियां यहां पर बहती हैं। इसी मैदान में अत्यंत प्राचीन काल में सरस्वती और दुस्धवती नदियां बहती थीं। समय के साथ साथ यह नदियां विलुप्त हो गईं। यह चौरस मैदान 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूर्व दिशा में इसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर है। पूर्वी सीमा यमुना नदी बनाती है। इसके दक्षिण पूर्वी भाग पर अरावली पहाड़ियाँ समाप्त होती हुई मिलती हैं। समुद्र तल से इस मैदान की औसत ऊंचाई 250 मीटर है। उत्तरी भारत में यह ऊंचाई 300 मीटर है, जबकि दक्षिणी पूर्वी भाग में यह 213 मीटर रह जाती है। नदियों के किनारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनकी अधिकतम चौड़ाई 10 से 12 किलोमीटर तक है। इन क्षेत्रों को बेट कहते हैं। रावी और ब्यास नदियों के बीच के भूभाग को अपर बारी दुआब, ब्यास और सतलज के बीच के भूभाग को बिस्त दुआब तथा सतलज के दक्षिण की ओर के भूभाग को मालवा मैदान कहते हैं। यह अपेक्षाकृत ऊंचे मैदान है। इसके और अधिक दक्षिण में हरियाणा का मैदान है, जो उपयुक्त मैदानों की अपेक्षा जल के प्रवाह में शुष्क रहता है। रावी, ब्यास और सतलज नदियों के इस मैदान के लगभग 1/4 भाग को प्रभावित करती हैं। यमुना नदी अपने दाएं किनारे पर फैले भूभाग को प्रभावित करती हैं। सतलज और यमुना के बीच में घग्घर, जो कि एक मौसमी प्रवाह है, पाई जाती है। इसकी तलहटी 10 किलोमीटर चौड़ी है। सूरतगढ़ के पूर्व में 15 किलोमीटर तक इसकी तलहटी मिलती है। प्राचीन समय में इसे सरस्वती के नाम से जाना जाता था, जिसमें पानी का प्रवाह निरंतर रहा करता था। उस समय यहाँ की जलवायु शुष्क थी। वर्तमान समय में सिंचाई की सुविधाओं के कारण यह मैदान हरा भरा रहता है। दूसरा, राजस्थान का मैदान। इसका विस्तार 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में फैला है तथा इसका विस्तार भारत पाकिस्तान सीमा तक है। इसमें मरुस्थली तथा बांगड़ क्षेत्र भी शामिल हैं। मरुस्थली मारवाड़ मैदान का एक अंग है, जो बालू से सुसज्जित है। कहीं कहीं पर यह नीस, सिस्ट तथा ग्रेनाइट चट्टानों की नंगी सतह दिखाई पड़ती है, जो इस बात का प्रमाण है कि यह प्रायद्वीपीय पठार का एक अंग रहा है। बालू के टीलों का यह प्राधान्य है। दक्षिणी पश्चिमी भाग में पवनानुवर्ती टीले पाए जाते हैं, जबकि दक्षिण पूर्वी भाग में, जहाँ पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं, बरखान और अनुप्रस्थ टीले पाए जाते हैं। अरावली के पूर्व में बांगड़ की स्टेपी भूमि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तृत मिलती है। पश्चिम में इसका विस्तार 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा तक है। यहाँ की प्रमुख नदी लूनी है। इसका बेसिन 150 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ भी मिलती हैं। लूनी नदी मौसमी नदी है, जो दक्षिण पश्चिम दिशा में कच्छ के रण की ओर प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर अनेक झीलें भी पाई जाती हैं। सांभर, डिडवाना, लुनकर, नसार, कुचामन, डेगना प्रमुख झीलें हैं। सांभर सबसे बड़ी झील है, जो 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। यह जयपुर के 65 किलोमीटर पश्चिम में है। गंगा का मैदान। यह मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों के 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग पर फैला है। इसका ढाल पश्चिम पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर है। यहाँ गंगा की प्रमुख नदी है। दाएं किनारे पर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना और सोन हैं, जबकि बाएं किनारे पर घाघरा, गंडक और कोसी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इस मैदान पर नदियों का जल फैला हुआ है, जो बरसात में बाढ़ लाने में सहायक होता है तथा प्रतिवर्ष हजारों टन मिट्टी यहाँ पर लाकर बिछा देती है। भू आकृतिक दृष्टि से पांगर और खादर इसके दो भाग हैं। नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग, जो कि पानी से भरे रहते हैं, बील कहलाते हैं। इस मैदान को 3 उपविभागों में बांटा गया है। पहला, ऊपरी गंगा का मैदान अपर गंगा प्लेन। इस मैदान की उत्तरी सीमा शिवालिक पहाड़ियों, दक्षिणी सीमा प्रायद्वीपीय पठार द्वारा बनती है। पश्चिम में यमुना नदी इसकी प्राकृतिक सीमा बनाती है तथा पूर्व में 100 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा इसकी सीमा बनती है। इस मैदान की ऊंचाई 100 से 300 मीटर के बीच पाई जाती है। उत्तरी भाग में ढाल दक्षिण व पूर्व की अपेक्षा अधिक तेज हैं। यमुना, गंगा, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा इस मैदान की प्रमुख नदियां हैं। दूसरा, मध्य गंगा का मैदान मिडिल गंगा प्लेन। उत्तरी बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश पर इसका विस्तार है। पश्चिमी सीमा 100 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा बनती है जो इलाहाबाद फैजाबाद रेल मार्ग का अनुसरण करती है। कुछ विद्वानों ने इसकी सीमा 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा निर्धारित की है। पूर्वी सीमा उत्तरी पूर्वी भाग में 75 मीटर तथा दक्षिण पूर्व में 30 मीटर की समोच्च रेखाओं द्वारा बनती है। यह मैदान नदियों के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित है। कोसी नदी इस कार्य के लिए बहुत बदनाम है। घाघरा, गंडक, कोसी गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यहां खादर भूमि की अधिकता है, भूमि में कंकड़ों का अभाव है। यह मैदान अत्यंत उपजाऊ है। यहां स्थान स्थान पर धनुषाकार झीलें, ऑक्सबो लेक्स व नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग मिलते हैं। बाढ़ों की अधिकता इस मैदान की नदियों की प्रमुख विशेषता है। तीसरा, निम्न गंगा का मैदान लोअर गंगा प्लेन। इस मैदान में उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले को छोड़कर संपूर्ण पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इस प्रकार यह हिमालय की तलहटी से लगाकर गंगा के डेल्टा तक फैला है। मैदान का उत्तरी भाग तीस्ता, जलढाका और टोरसा नदियों द्वारा सींचा जाता है। राजमहल पहाड़ियों के निकट यह मैदान सकरा हो गया है। इससे दक्षिण में गंगा के पुराना डेल्टा का विस्तार है। इसका निर्माण प्लिस्टोसीन काल में हुआ है। इससे और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ डेल्टाई भाग नवीनतम कांप से निर्मित भूभाग हैं। यह समुद्र तल से केवल 50 मीटर ऊंचा है तथा नीचा समतल मैदान है। समुद्र में उठने वाले ज्वार इसके अधिकांश भाग को जल से ढक लेते हैं, इसलिए यह भाग अधिकतर दलदला बना रहता है। इस डेल्टा के ऊपरी भाग में कहीं कहीं कुछ टीले या नदियों के पुराने चर पाए जाते हैं। यह उभरे भाग गांवों के बसाव स्थान के रूप में प्रयोग किए जाते हैं जो कि पानी में डूबने से सुरक्षित रहते हैं। निम्न भूमि को बिल कहते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसको असम घाटी भी कहते हैं। यह मेघालय पठार और हिमालय पर्वत के बीच में एक लंबा और पतला मैदान है। यह केवल 80 किलोमीटर चौड़ा है। ब्रह्मपुत्र नदी ने इस घाटी को बनाने में यहाँ पर भारी मात्रा में मिट्टी लाकर एकत्र कर दी है। मिट्टी के भारी जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीप भी निर्मित हो गए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी साहिया के निकट मैदान में प्रवेश करती है और 720 किलोमीटर बहने पर धुवरी के निकट दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। घाटी का तल पूर्वी भाग में 130 मीटर तथा पश्चिमी भाग में 30 मीटर ऊंचा है। इस प्रकार इसके ढाल का औसत 12 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। ढाल की दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। उत्तरी सीमा पर तराई व अर्ध तराई क्षेत्र पाए जाते हैं जो दलदल, मिट्टी व सघन वन से आच्छादित रहते हैं। भारतीय तट एवं द्वीप समूह, द इंडियन कोस्ट्स एंड आइलैंड्स। भारत की तटरेखा 5686 किलोमीटर लंबी है। यह पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र तक फैली है। यह तट व तटीय मैदान संरचना व धरातल की दृष्टि से स्पष्ट विभिन्नताएं रखते हैं। यह पश्चिमी भाग में पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी भाग में पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाने जाते हैं। यह मैदान या तो समुद्र की अपरदन क्रिया द्वारा बने हैं या नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कीचड़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा बने हैं। पहला, पश्चिमी तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। यह मैदान पश्चिमी घाट के पश्चिम में कच्छ की घाड़ी से लेकर कुमारी अंतरिप तक फैला है। पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक विभिन्नताएं रखता है। इस मैदान की औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने के निकट इसकी सर्वाधिक चौड़ाई 80 किलोमीटर है। अनेक स्थानों पर यह 50 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है। यह तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ छोटी और तीव्रगामी हैं, अतः इनके पानी का उपयोग सिंचाई, जल विद्युत या जल यातायात आदि किसी भी कार्य में नहीं हो पाता है। इस विशेषता के कारण यह अपने मैदान का विस्तार भी नहीं कर पाती। इसके चार उपखंड हैं। पहला, कच्छ प्रायद्वीप मैदान। कच्छ एक द्वीप है, किंतु इसको देश की मुख्य भूमि से अलग करने वाली खाड़ी इतनी उथली है कि शुष्क ऋतु में कच्छ मुख्य भूमि से मिल जाता है और वर्षा ऋतु में इससे अलग हो जाता है। कच्छ का मैदान नमकीन रेतीला मैदान है। यह समुद्र के नीचे रह चुका है। वर्षा की कमी के कारण यह शुष्क व अर्धशुष्क मैदान है। यह अनावृत समतल मैदान की भांति है। कहीं कहीं बालू व चट्टानों के द्वीप उभरे दिखाई देते हैं। प्रायद्वीप के मध्य में गिरिनार नाम की पहाड़ियां पाई जाती हैं। वर्षा के दिनों में यहां बाढ़ आ जाती है। दूसरा, गुजरात का मैदान। यह मैदान कच्छ और सौराष्ट्र के पूर्व की ओर फैला है। इसमें गुजरात का भीतरी मैदान और खंबात की खाड़ी का तटवर्तीय क्षेत्र सम्मिलित है। इसका ढाल पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की ओर है। यहाँ पर माही, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। इन नदियों ने यहाँ भारी मात्रा में कांप जमा कर दी है। यह समुद्र तल से अधिक ऊंचा नहीं है। साबरमती के मुहाने पर तो यह केवल 12 मीटर ऊंचा है। तटीय क्षेत्रों में ज्वार का जल भरते रहने के कारण नमकीन दलदल पाए जाते हैं, जबकि भीतरी भागों में उपजाऊ कांप मिट्टी पर कृषि की जाती है। तीसरा, कोंकण का मैदान। यह दमन से लेकर गोवा तक 500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। यह 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के बीच चौड़े हैं। मुंबई के निकट चौड़ाई सबसे अधिक है। यह मैदान काफ़ी कटे फटे हैं, किंतु मुंबई द्वीप के चारों ओर फैली उल्हास की थाना संकीर्ण खाड़ी सबसे महत्वपूर्ण वृत्ताकार खुली खाड़ी है, जो द्वीप के दक्षिणी भाग पर अति सुंदर प्राकृतिक पृष्ठ प्रदेश प्रदान करती है। कोंकण के पश्चिमी तट की ढलानें लावा की काली मिट्टी से बनी हुई हैं और उन पर साल, सागवान आदि के वन खूब उगते हैं। तट के साथ साथ जो रेत के टीले बन गए हैं वे पहाड़ी नदियों को समुद्र तक पहुँचने से रोकते हैं। इस कारण कई स्थानों पर नदियों का पानी छोटी छोटी झीलों में एकत्र हो गया है। इन झीलों के किनारों पर नारियल खूब होता है। इस मैदान में वर्षा अधिक होती है। यह काफ़ी उपजाऊ है। यहाँ आम व चावल अधिक होता है। चौथा, मालाबार तटीय मैदान। यह मैदान गोवा से लेकर मैंगलोर तक 225 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। यह प्राचीन रूपांतरित चट्टानों द्वारा निर्मित है। इसका तट काफ़ी कटा फटा है। पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली अनेक छोटी छोटी कांप व तीव्रगामी नदियों ने यहाँ भारी मात्रा में अवसाद एकत्र करके कांप के मैदानों का निर्माण किया है, जो काफ़ी उपजाऊ हैं। यहाँ पर लेटराइट पहाड़ियाँ मिलती हैं। तट के ऊपर लहरों का भी प्रभाव रहता है। समस्त तट भूमि तक वालुका स्तूप पाए जाते हैं। गोवा में स्थित मांडोवी जुआरी संकीर्ण खाड़ी सबसे महत्वपूर्ण वृत्ताकार खुली खाड़ी के रूप में है। वर्षा अधिक होने तथा सामान्य तापमान अनुकूल होने से सुपारी, गरम मसाले, केला, आम, नारियल, चावल अधिक पैदा होते हैं। पांचवा, दक्षिण तटीय मैदान। यह प्रमुखतः केरल का तटीय मैदान है, जो मंगलौर से कुमारी अंतरिप कन्याकुमारी तक 500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। यह काफ़ी चौड़ा तटीय मैदान है। इसमें लंबे और सकरे प्रवाल या कयाल पाए जाते हैं। नदियों के मुहाने पर बालू जम जाने से भी झीलों का निर्माण हुआ है। इन झीलों को परस्पर नहरों द्वारा मिला दिया गया है और लोग उसमें नौकाओं द्वारा यात्रा तथा व्यापार करते हैं। कोचीन का बंदरगाह इसी प्रकार की झील के मुँह को गहरा करके बनाया गया है। यहाँ पर मछलियाँ भी पकड़ी जाती हैं। तटीय मैदान पर नारियल, चावल, सुपारी, केला व गरम मसाले उगाए जाते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान की संरचना एवं पश्चिमी तटीय मैदान के पूर्व में पश्चिमी घाट दीवार की भांति पाए जाते हैं। यह पश्चिमी घाट भूगर्भिक उत्पातों के कारण ऊपर की ओर उठ गए हैं और इनके पश्चिम का भाग समुद्र में डूब गया है। पश्चिमी ढालों को समुद्री लहरों ने काट काट कर सकरे तटीय मैदान का निर्माण किया है। क्रिटेशियस युग में प्रायद्वीपीय भारत के बहुत बड़े भाग में लावा की अनेक परतें बिछ गई थीं। लावा की चट्टानें पश्चिमी घाट तक सीमित हैं। मैडली कॉट व ब्लेनफोर्ड भूगर्भविदताओं का मानना है कि पश्चिमी घाट कोंकण से एक दीवार की भांति ऊंचे उठ गए हैं, जिनकी ऊंचाई 610 से 1220 मीटर के बीच है। कुछ स्थानों पर यह कट गई हैं, अन्यथा समुद्री कगार सी क्लिफ के अनुरूप ही दिखाई पड़ते। महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई पूर्वी तट की अपेक्षा यहाँ पर अधिक है। विशेष रूप से यह कठियावाड़, गुजरात व कोंकण तट के समीप अधिक चौड़े हैं। गोवा से केरल तक इनकी चौड़ाई कम हो गई है। इसका ढाल तट के निकट धीमा है, किंतु समुद्र की ओर बढ़ने पर यह अधिक तेज हो जाता है। तट के चारों ओर सामान्य ढाल 1.5 से 2 मीटर का है। खंबात की खाड़ी के निकट यह ढाल 30 सेंटीमीटर का है, जबकि कुमारी अंतरीप के निकट सबसे अधिक 3 मीटर है। यह मग्न तट पेट्रोल के भावी व वर्तमान भंडार हैं। पूर्वी तटीय मैदान यह स्वर्ण रेखा नदी से कुमारी अंतरीप तक फैला है। यह पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है तथा कई प्रमुख डेल्टाओं से सुसज्जित है। भू आकृति की दृष्टि से यह स्पष्टतया दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तटीय भाग है, जिसमें नदियों के डेल्टा हैं जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा बने हैं। इन नदियों ने यहाँ पर कांप मिट्टी पठार के ऊपरी भागों से लाकर बिछा दी है। इसके समुद्री निकटवर्ती भागों पर बालू के ढेरों की लंबी श्रृंखला मिलती है, जो समुद्री लहरों द्वारा तटीय किनारों पर बन गई हैं। इन बालू के ढेरों से चिल्का और पालीकट जैसे छिछली झीलों का निर्माण हुआ है। दूसरा भीतरी भाग है, जो अधिकांशतः नदियों के ऊपरी भाग में है। यह कांप मिट्टी का अवशिष्ट मैदान है, जो उभरे हुए भूभाग के अनावृत्ति के कारण द्वारा बना है। इस मैदान में कहीं कहीं तो कांप मिट्टी गहरी है और कहीं कहीं यह काफ़ी हल्की है, तथा वहाँ पर पुरानी चट्टान भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इस संपूर्ण तट को कोरोमंडल तथा उत्तरी सरकार तट कहते हैं। इनको तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला उत्कल का मैदान। यह मैदान उड़ीसा में तट के सहारे लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई में फैले हैं। महानदी के डेल्टा में यह अधिक चौड़ा है, जहां बालू के अनेक टीले पाए जाते हैं तथा तटरेखा सीधी व सपाट है। इस डेल्टा के दक्षिण में चिल्का झील है, जो 75 किलोमीटर लंबी है। इस झील के पूर्व व उत्तर की ओर रेत के निक्षेप हैं तथा दक्षिण व पश्चिम की ओर पहाड़ी चट्टाने हैं। झील के दक्षिण में पूर्वी घाट समुद्र तट के डॉल्फिन नाम की चट्टान के पीछे सुरक्षित हैं। इस चट्टान के पीछे सुरक्षित गहरे जल में जलयान आसानी से ठहर सकते हैं। अनेक छोटी छोटी नदियाँ पूर्वी घाट की पहाड़ियों से उतर कर यहां समुद्र में गिरती हैं, जिनके मुहानों पर कई छोटे छोटे बंदरगाहों का विकास हुआ है। इनका महत्व मत्स्य पालन व अनुतटीय व्यापार के लिए पर्याप्त है। डेल्टाई व तटीय भाग में मिट्टी उपजाऊ होने के कारण चावल और जूट पैदा किया जाता है। दूसरा आंध्र का मैदान। यह मैदान आंध्र प्रदेश के तटीय भाग पर फैला है। इसमें गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा स्थित हैं। यह डेल्टाई क्षेत्र 160 किलोमीटर में फैले हैं व एक दूसरे के बहुत निकट हैं। इनसे लगभग समान दूरी पर विशाल कलेरू झील स्थित है, जिसमें कई छोटी छोटी नदियां आकर गिरती हैं। यह झील आगे की ओर तटरेखा की दिशा में है। हो सकता है कि यह किसी समय की समुद्री सीमा की सूचना देती हो। यहाँ पर मैदान काफ़ी चौड़ा है। कृष्णा नदी के सहारे यह 100 किलोमीटर लंबाई में भीतर तक चला गया है। इस मैदान पर विशाखापट्टनम व मछलीपट्टनम बंदरगाह स्थित हैं। तीसरा, तमिलनाडु का मैदान। यह मैदान तमिलनाडु व पांडिचेरी के तटीय प्रदेश पर फैला है। इसका विस्तार चेन्नई के उत्तर में पुलिकट झील से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक 675 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। यह 100 किलोमीटर चौड़ा है। कावेरी नदी के किनारे यह 130 किलोमीटर तक की चौड़ाई में फैला है। पुलिकट वलयाकार प्रवाल झील है, जिसको श्रीहरिकोटा नाम का द्वीप समुद्र से अलग किए हुए है। यह द्वीप प्राचीन चट्टानों से निर्मित तटवर्तीय श्रेणी हैं। यह चावल यहाँ की प्रमुख फसल है। तट के साथ साथ रेत के टीले हैं, जिन पर नारियल खूब होता है। तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में अनेक छोटे छोटे प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। द्वीप समूह आइलैंड्स। भारत में कुल 247 द्वीप हैं, जिनमें से 222 द्वीप बंगाल की खाड़ी में तथा शेष अरब सागर में स्थित हैं। खाड़ी व सागर दोनों में स्थित द्वीप एक दूसरे से संरचना की दृष्टि से भिन्नता रखते हैं। अरब सागरी द्वीप प्राचीन भूमंडल के अवशिष्ट भाग हैं तथा प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप टर्शियरी पर्वतमाला की धरातलीय विशेषता के परिचायक हैं तथा समुद्र तल से 750 मीटर की ऊंचाई तक स्थित हैं। दोनों ओर के द्वीपों को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। एक, वे जो तट के प्रायः निकट हैं, ऑफशोर आइलैंड्स, तथा तट से 1 से 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दूसरे, वे जो तट से काफ़ी दूर स्थित, अर्थात 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित हैं। इन्हें दूरवर्ती द्वीप डिस्टेंट आइलैंड कहा जा सकता है। अरब सागर के द्वीप। ये द्वीप कच्छ की खाड़ी से लेकर दूर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक फैले हैं। इनको निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, तट के निकटवर्ती द्वीप ऑफशोर आइलैंड्स। गुजरात के कठियावाड़ के पूर्वी और दक्षिणी तट के निकट कई चट्टाने द्वीप मिलते हैं। पीरम और भौंसला द्वीप यहाँ पर प्रमुख हैं। यह चट्टानी द्वीप दूर दक्षिण मुंबई और मंगलोर के बीच पाए जाते हैं। मुंबई के निकट हैनरे और कैनरे द्वीप तथा मुंबई और मुख्य भूमि के बीच बूचर द्वीप, स्वेलीफेंटा द्वीप और बेसिन के निकट अरनाला द्वीप मुख्य हैं। मुंबई और मंगलोर के बीच अनेक द्वीप मिलते हैं। मंगलोर के उत्तर में भटकल द्वीप हैं, इसके निकट पीजन नाक द्वीप है। यलवान बंदरगाह के निकट लगभग 12 द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप 1.4 किलोमीटर का है, पाए जाते हैं। एलिफेंटा और रत्नागिरी के बीच में द्वीपों का अभाव पाया जाता है। तट के निकट चट्टानी द्वीपों के अलावा बालू मिट्टी अथवा कांप निर्मित द्वीप भी मिलते हैं। ऐसे द्वीप खंबात की खाड़ी तथा नर्मदा ताप्ती के मुहानों पर पाए जाते हैं। खंबात की खाड़ी में दीव द्वीप 12 किलोमीटर लंबा द्वीप है। कच्छ की खाड़ी में वैद, नोरा, पिरटान और करुभार द्वीप इसी प्रकार के द्वीप हैं। नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के चौड़े मुहाने के निकट खडियावेट, अलियावेट तथा अनेक छोटे द्वीप मिलते हैं। दूसरा, तट से सुदूरवर्ती द्वीप। अरब सागर के लक्षद्वीप सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आते हैं। इनको पहले लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीन दीवी नामों से पुकारा जाता था। लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ 1 लाख द्वीपों से है। यह भारत के पश्चिमी तट से लगभग 200 से 300 किलोमीटर दूर 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 71 डिग्री 4 मिनट से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच फैले हैं। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा द्वीप लक्षद्वीप है। यह मुख्यतः अमीन देवी छोटा द्वीप है। मिनिकोय दूर दक्षिण में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। यह 8 अंश पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 4.5 वर्ग किलोमीटर है। इन द्वीपों पर नारियल के वृक्ष अधिकता से पाए जाते हैं। दूसरा, बंगाल की खाड़ी के द्वीप। यह मुख्य भूमि से 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह द्वीप 590 किलोमीटर की लंबाई तथा अधिक से अधिक 50 किलोमीटर की चौड़ाई में अर्धचंद्राकार रूप में फैले हैं। म्यांमार तट से यह 500 मीटर गहरी समुद्री धारा से अलग होते हैं। यहाँ पर द्वीप समूह के रूप में पाए जाते हैं जो एक दूसरे से संकीर्ण खाड़ी द्वारा अलग होते हैं। इन द्वीपों का तट दांतेदार वक्रता रखता है जो जलयानों के सुरक्षित पोताश्रय प्रदान करता है। अंडमान और निकोबार यहाँ के दो प्रमुख द्वीप हैं। यह समूह उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण दक्षिण पूर्व में 10 डिग्री से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच फैले हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, तटवर्ती द्वीप। बंगाल की खाड़ी में ऐसे द्वीपों की संख्या गंगा के डेल्टाई भाग में अधिक है। यहाँ पर दंतियों ने कांप मिट्टी का निक्षेप करके अनेक द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के सामने 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है जो गंगा सागर के नाम से विख्यात है। 24 परगना के कटे फटे तट के सामने अनेक मग्नतटीय द्वीप पाए जाते हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर न्यू मरे द्वीप का निर्माण हुआ है। महानदी ब्राह्मणी नदियों के डेल्टा में भी छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। गोदावरी कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा पर ऐसे द्वीपों का अभाव है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में पामवन द्वीप पाया जाता है जो आदमपुल का एक अंश है। यह चट्टानी धरातल रखता है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में प्रायद्वीपीय धरातल का विस्तार मात्र है। रामनाथपुरम व धनुषकोट के बीच एक पुल है जो इसको मुख्य भूमि से रेलमार्ग द्वारा जोड़ता है। अधिक दक्षिण की ओर मन्नार खाड़ी में 10 द्वीप पाए जाते हैं जो तट से औसतन 7 किलोमीटर की दूरी पर फैले हैं। यह सकरे व नीचा धरातल रखने वाले द्वीप हैं। नेल्लौर के निकट श्रीहरिकोटा द्वीप बड़ा महत्वपूर्ण द्वीप है। यह अंतरिक्ष अनुसंधान का केंद्र बन गया है। यह द्वीप 50 किलोमीटर लंबा है। यहाँ एक अन्य द्वीप हेयर द्वीप तूतीकोरिन से 4 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह प्रवाल निर्मित है। दूसरा, सुदूरवर्ती द्वीप। इनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। ए, अंडमान द्वीप समूह। यह द्वीप 92 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर से 93 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर और 14 डिग्री से 10 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच 300 किलोमीटर की लंबाई में फैले हैं। इनमें उत्तरी अंडमान, मध्यवर्ती अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान द्वीप सम्मिलित हैं। उत्तरी अंडमान द्वीप समूह का धरातल मध्यवर्ती श्रेणी तथा तंग घाटियों से सुसज्जित है। मध्यवर्ती और दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह अपेक्षतया अपने मध्य भाग में समतल धरातल रखते हैं तथा किनारों पर कुछ ऊँचे हैं। इनका धरातल प्रायद्वीपीय उच्च भूमि की भांति है। अंतर केवल इतना है कि इनका पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा ऊंचा है जबकि प्रायद्वीपीय उच्च भाग का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा ऊंचा है। इन द्वीपों का पश्चिमी तट प्रवाल चट्टाने रखता है जो तट से 32 किलोमीटर भीतर तक फैली हैं। इन प्रवाल भित्तियों ने इनके पश्चिमी ढाल को समतल रूप प्रदान करने में मदद की है। छोटा अंडमान अपने उत्तरी भाग को छोड़कर समतल धरातलीय विशेषता वाला है। अंडमान द्वीप समूह 8300 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। यहाँ पर टर्शियरी काल की बलुआ पत्थर, चूना पत्थर तथा सेल चट्टानें पाई जाती हैं। यह द्वीप काफ़ी कटे फटे धरातल वाले हैं। यहाँ पर धरातल की सबसे अधिक ऊंचाई 730 मीटर है। यहाँ पर वनों की अधिकता है। बी, निकोबार द्वीप समूह। यह द्वीप समूह अंडमान द्वीप समूह के छोटे अंडमान से 10 अंश नहर 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग हैं। यह 19 द्वीपों का समूह है जो 6 डिग्री 30 मिनट से 9 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच फैले हैं। निकोबार द्वीप समूह का उत्तरी भाग निकोबार जो 168 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है तथा दक्षिण भाग महान निकोबार जो 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है कहलाता है। कार निकोबार के दक्षिण में तिलान चोंग, चनुमता, टेरेसा, कमोर्टा, कचाल, नानकरोडी, ट्रिकेंट द्वीप महत्वपूर्ण हैं। इन द्वीपों के दक्षिण और महान निकोबार के बीच छोटा निकोबार द्वीप स्थित है। यह महान निकोबार से सोम बरेरो चैनल द्वारा अलग होता है। यह महान निकोबार इस समूह का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 862 वर्ग किलोमीटर है। ऐसा कहा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह उस निमग्न पर्वत सबमर्ज्ड माउंटेन की ऊपर उठी चोटियां हैं जो किसी समय अराकान योमा को सुमात्रा द्वीप की मध्यवर्ती पर्वत श्रेणी से मिलाती थीं। पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में दो ज्वालामुखी द्वीप बैरेन व नरकोंगडन द्वीप पाए जाते हैं। इन द्वीपों का किनारा कटाफटा है। इनके आसपास प्रवाल भित्तियों की अधिकता पाई जाती है। इनका धरातल उबड़ और पथरीला है। यह द्वीप हाल ही में अपने आर्थिक विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ पर वन संबंधी उद्योगों का विकास किए जाने की संभावना है।